मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री द्वारा बोंडाई हमले की जांच के लिए फेडरल रॉयल कमीशन न बुलाने के फैसले का बचाव, स्विट्जरलैंड में आग लगने से हादसा और खेलों में उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से की रिटायरमेंट की घोषणा। लीजिए प्रस्तुत हैं इस सप्ताह भर के प्रमुख समाचार विस्तार में और मैं हूँ अनीता बरार। बोंडाई आतंकी हमले की जांच के लिए फेडरल रॉयल कमीशन की बढ़ती मांगों के बीच प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट पर इंडिपेंडेंट रिव्यू करने के अपने फैसले पर टिके रहे। ऑस्ट्रेलिया की ह्यूमन राइट कमिश्नर लॉरेन फिन्ने ने भी फेडरल रॉयल कमीशन की मांगों का समर्थन किया है और कहा है कि इससे हिंसा के असली कारणों, जिसमें एंटी सेमिटिज्म भी शामिल है, उसको सुलझाने में मदद मिलेगी। एल्बनीसी का कहना है कि लोगों को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन एजियो के पूर्व हेड डेनिस रिचर्डसन इस मामले को देखने के लिए सबसे काबिल व्यक्ति हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट पर तुरंत रिव्यू का आदेश दिया।
मिस्टर रिचर्डसन विल असेस व्हेदर कॉमनवेल्थ एजेंसीज परफॉर्म टू मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। ही विल कंसीडर what these agencies knew about the alleged offenders before the attack.
एल्बनीसी का कहना है कि इंडिपेंडेंट जांच का मकसद एजेंसी की परफॉर्मेंस या जानकारी शेयर करने में किसी भी कमी की पहचान करना होगा और इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2026 से पहले आनी चाहिए। इस बीच विपक्ष के नेता सुजान ली ने एल्बनीसी पर एजेंसी की संभावित नाकामियों के बारे में तुरंत पारदर्शी न होने और इन सवालों में देरी करने का आरोप लगाया।
When a former AFP commissioner warns that Bondi raises deeper questions than intelligence failures or administrative arrangements, then this Prime Minister should listen. Why does the Prime Minister not want these questions asked? What is the Prime Minister hiding?
National Party ke leader David Littleproud ne bhi phir se Bondi terror attack ki jaanch ke liye Commonwealth Royal Commission ki maang ki. उनका कहना है कि मौजूदा रिव्यू प्रोसेस नफरत से भरे हमले या घरेलू कट्टरता के बढ़ते खतरे से ठीक से निपटने में नाकाम हो रहे हैं।
And the reality is, unless you have a Commonwealth Royal Commission, you're not compelling the federal agencies to work with state agencies and to give all the evidence. And this is the frightening thing that the Prime Minister won't face up to.
अहमद अल अहमद, जिसने बोंडाई के एक बंदूकधारी के हथियार पर काबू पाया और शायद अनगिनत लोगों की जान बचाई, वहीं दूसरे शूटर ने उन्हें कई बार गोली मारी, उनसे सीबीएस न्यूज़ ने सीरियाई ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम होने से यहूदियों की जान बचाने के लिए आगे आने का कारण पूछा, तो उनका कहना रहा कि मासूमों की जान बचाने में धर्म कोई कारक यानी फैक्टर नहीं है।
यू आर अ मुस्लिम मैन who saved Jewish lives.
I save human innocent people. I save innocent people. I don't look for the religion and never think about the religion. When I did this, I did for the innocent human, a human being like us. That's what I know.
अल अहमद को जान से मारने की धमकियां मिली हैं और सोशल मीडिया पर लोगों ने गाली गलौज करके उनका अपमान किया है और उन्हें गद्दार तक कहा गया। क्रॉस मोंटाना में स्विस एल्पाइन रिसोर्ट में नववर्ष मनाने के दौरान एक भीड़ भरे बार में आग लगने से करीब 40 लोगों की मृत्यु हो गई और 115 से अधिक लोग घायल हो गए। आग में घायल हुए लोगों में एक ऑस्ट्रेलियाई भी शामिल है। विदेश मामलों और व्यापार विभाग ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के परिवार को काउंसलर मदद दी जा रही है। एबीसी रेडियो नेशनल पर बोलते हुए ऊर्जा मंत्री क्रिस बॉवन ने सांत्वना संदेश भेजा।
All Australians send their condolences to the people of Switzerland, the people involved. I can confirm one Australian has been injured and is receiving medical care and the family is receiving support, Australian consular support. I can't go into any further details for privacy reasons. The name of the individual is not being released at this point.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस ने वेनेजुएला में अपना पहला जमीनी ऑपरेशन किया है जब से उसने कथित ड्रग स्मगलिंग बोट्स के खिलाफ स्ट्राइक का कैंपेन शुरू किया था, जिसमें अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कार्रवाई की पुष्टि की।
But there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs, so we hit all the boats, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around.
اور آسٹریلیا کے لوگوں نے مشہور سڈنی ہاربر آتش بازی کے ساتھ 2026 کی شروعات کا جشن منایا. ہاربر شہر میں جشن کا ماحول غمگین تھا. یہ جشن بونڈائی بیچ پر ایک یہودی تہوار پر کتھت طور پر ایک پتا اور بیٹے دوارا گولی باری کرنے کے بس دو ہفتے بعد منایا جا رہا تھا. سڈنی ہاربر برج پر ایک مینورا کی تصویر دکھائی گئی اور رات کو 11 بجے آتنکی حملے میں مارے گئے 15 لوگوں کو شردھانجلی دینے کے لیے ایک منٹ کا مون رکھا گیا. کڑی سرکشا ویوستھا کے بیچ لاکھوں لوگ ہاربر کے آس پاس اکٹھے
ہوئے.
And we don't fear the terrorism as such.
اور کھیلوں میں آسٹریلیائی بلے باز عثمان خواجہ نے اس ہفتے انگلینڈ کے خلاف سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر ہونے والے 5ویں ایشز ٹیسٹ کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے کی گھوشنا کی. 39 سال کے عثمان خواجہ نے 2011 میں ایشز سیریز کے آخری میچ میں اسی میدان پر اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا. تب سے انہوں نے 87 میچوں میں 43 رن کی اوسط سے 6,000 سے ادھک رن بنائے ہیں جس میں 16 شتک شامل ہیں. عثمان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ان کا کریئر دوسروں کو پریرت کرے گا. اور اسی کے ساتھ سپتاہ بھر کے مکھیہ سماچار سماپت ہوئے. انیہ سماچاروں اور سمودائے کے سماچاروں کے لیے آپ ہماری فیس بک اور ہمارے ویب پیج sps.com.au/hindi سے جڑے رہیں.